ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भगवान भगवत गीता के 8वें अध्याय में जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति, उसमें अर्जुन को बहुत ही सरल विधि से कैसे मुझे प्राप्त किया जा सकता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, अनन्य चेता सततम योमां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तो अर्जुन भगवान के महान भक्त थे और जिसके कारण से भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का जो गुह्यतम संदेश है वो प्रदान किया। भगवान कहते भक्तों सीमे सखा चेति रहस्यम है तदुत्तमम। हे अर्जुन, तुम मेरे सखा हो जिसके कारण से, और आप मेरे एक महान भक्त हो जिसके कारण से मैं ये अतुलनीय श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है या मुझे प्राप्त करने की जो विधि है इसका जो नॉलेज है मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। तो भगवान उस 8वें अध्याय के श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करना बहुत ही सरल है। अनन्य चेता सततम योमां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ। हे प्रथा के पुत्र अर्जुन, मैं अत्यधिक सुलभ हो जाता हूं एक विधि के द्वारा, और वो विधि क्या है? यदि कोई व्यक्ति अनन्य भावना से मेरा स्मरण करता है, तो स्मरण करने की विधि वही कृष्णा भगवत गीता के अंतिम में हमें शिक्षा देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यः माम एकम शरणम व्रजः। कि सारे भौतिक धर्मों का परित्याग करो और केवल एकमात्र मेरे ही शरण ग्रहण करो। तो भगवान की शरण ग्रहण करना ये भगवान ही हमें सिखाते हैं। इसलिए वही कृष्णा जो द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, वही कृष्णा कलयुग के शुरुआत में 500 साल पूर्व श्री चैतन्य देव या चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, और वही जो विधि कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से हमें बोली है, हमें सिखाई है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल आचरण कैसे करना है उसकी शिक्षा देते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु एक अमूल्य धन अपने साथ लेके आते हैं। उस धन को यदि हम अपना बना लेते हैं तो निश्चित रूप से हम कृष्ण का जो स्मरण है अपने जीवन में सर्वाधिक कर सकते हैं। और वो विधि क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने ग्रंथ हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं, नाम सम वस्तुना ए भव संसारे नाम से परम धन कृष्ण रे भंडारे। भक्ति विनोद ठाकुर जब हरि नाम की महिमा का वर्णन करते हैं हरि नाम चिंतामणि में, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच में संवाद है, उस संवाद में हरिदास ठाकुर कहते हैं, नाम से परम धन कृष्ण कृष्ण रे भंडारे, नाम सम वस्तु ना ए भव संसारे। इस त्रिभुवन में, इस भौतिक जगत में नाम के समान, कृष्ण नाम के समान सर्वोत्कृष्ट वस्तु नहीं है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर अपने गीत में भी कहते हैं, नाम बिना किछु नाही कार चौदह भुवन माझे, कि हरि नाम के अलावा इस चौदह लोकों में लेने योग्य, धारण करने योग्य, अपना बनाने योग्य कोई और वस्तु नहीं है। और उसी की शिक्षा श्री चैतन्य महाप्रभु देते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, नाम से परम धन कृष्णेर भंडारे, कृष्ण का भी अपने धाम में अपना ट्रेजरी है, कृष्ण का भी अपने धाम में अपना एक तिजोरी है, स्टोर हाउस है, और जिसमें तिजोरी में हम अपने पास जो सबसे मूल्यवान कीमती वस्तु है उसको रखते हैं से सुरक्षित रूप से। तो कृष्ण, सोचा जाए कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण अपने धाम में अपना जो तिजोरी है उसमें सबसे मूल्यवान चीज भगवान वहां रखते हैं। और वो मूल्यवान वस्तु क्या है? अपना ही नाम। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, कि ये जो नाम चेतन है और सारे रसों का आगार है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, भगवान कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान इस जगत में आते हैं तो अपने साथ अपने सारे पार्षदों को लेकर आते हैं, अपने जो नित्य संगी हैं उनको भी इस जगत में लेके आते हैं। वही श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपने सारे पार्षदों के संग में नवद्वीप मायापुर में अवतरित होते हैं तो इस जगत में क्या एक एक्स्ट्रा वस्तु लेके आते हैं? अपना पवित्र नाम। उस भंडार को, उस तिजोरी को खोल देते हैं और अपने नाम को लेके आते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन, कि गोलोक वृंदावन से चैतन्य महाप्रभु कोई सर्वसाधारण नाम को अपने साथ लेकर आए नहीं। चैतन्य महाप्रभु गोलोक का ये जो प्रेम धन है, प्रेम नाम संकीर्तन है, उसे अपने साथ लेके आए। और चैतन्य महाप्रभु जैसे उदार अवतार आज तक नहीं हुआ है। इसलिए लोचनदास ठाकुर क्या कहते हैं, परम करुणा बहु द्विजन निताई गौर चंद्र। जब श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका में एक स्थान में गौर निताय कि जो विग्रह है उनकी स्थापना की, और प्रभुपाद स्थापना करने के उपरांत एक व्यास आसन पर बैठ गए और डीटीज को देखते हुए लोचनदास ठाकुर के इस गीत को उन्होंने गाना शुरू किया। और जैसे श्रील प्रभुपाद ने ये शब्द कहे परम करुणा, तो श्रील प्रभुपाद की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने सोचा कि ये म्लेच्छ यवन आदि जहाँ निवास कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु इतने अधिक दयालु वदान्याय हैं कि वहां जाकर भी उनको अपना ये जो प्रेम धन है कृष्ण नाम, वो प्रदान कर रहे हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, महाप्रभु की खासियत क्या है? पात्रा पात्र विचार नाही नाही स्थाना स्थान। चैतन्य महाप्रभु देखते नहीं है कि ये योग्य है या अयोग्य। चैतन्य महाप्रभु जो जिस स्थान में है उसे कृष्ण प्रेम या कृष्ण भावनामृत कहिए रस प्रदान करते हैं। इसलिए जब रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को बनारस में मिलते हैं, इलाहाबाद में मिलते हैं, तो रूप गोस्वामी जैसे चैतन्य महाप्रभु को देखा तो रूप गोस्वामी अपने भाई अनुपम उनके साथ थे। चैतन्य महाप्रभु को देखने मात्र से ही उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करते हुए वो चैतन्य महाप्रभु का स्तुति गान करने लगे। और उन्होंने कहा, नमो महा वदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। अभी चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी हैं, वो कहते हैं कि नमो महा वदान्याय। वदान्याय का मतलब है कि आप सबसे बड़े दानी हो, वदान्याय हो, दयालु हो, सबसे बड़ा दाता हो। तो चैतन्य महाप्रभु कह सकते हैं कि मैं तो एक सन्यासी हूं, और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सन्यासी का अपने कहने योग्य दो ही वस्तु है, एक तो उसके पास उसका डंडा है और दूसरा कमंडलू है। तो मैं कैसे दाता हो सकता हूँ? लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं आप सर्वसाधारण डोनर नहीं हो, आप क्या दे रहे हो? कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप इस जगत की वस्तु नहीं दे रहे हो। हे चैतन्य देव, आप कृष्ण का जो अमूल्य प्रेम है वो सारे जगत को प्रदान कर रहे हो। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, क्योंकि आप वही कृष्ण हो। हाँ, अभी श्री चैतन्य देव के रूप में आप अवतरित हो। तो इस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अवतरित होते हैं और इतने अधिक वदान्याय हैं कि अपने धाम में अपने उस तिजोरी के दरवाजे तोड़ देते हैं और उसमें से जो मूल्यवान निधि है उसको अपने साथ उठाते हैं और इस जगत के बद्ध जीवों को प्रदान करते हैं। यही श्री चैतन्य महाप्रभु की सर्वाधिक वदान्यता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उनकी जो ग्लोरीज हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यही चाहते हैं कि हर एक जीव ये जो कृष्ण नाम रूपी धन है उसको अपना बना ले। कृष्ण नाम इस संसार में सर्वोत्तम साधन है, इसलिए तो रूप गोस्वामी ने कहा अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। तो कृष्ण नाम हमारे हाथ में है लेकिन फिर भी कृष्ण नाम का जो मूल्य है उसको हम उचित रूप में जानते नहीं है, उचित रूप में समझते नहीं है। लेकिन वो तभी हमारे समझ में आता है जब हम भगवान के भक्तों के संग में आते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भक्तों के संग में आकर भगवान की महिमा जब हम सुनते हैं तब हम वास्तव में भगवान के जो नाम है उसके मूल्य को समझ पाते हैं और तब हम अनुभव कर पाते कि कृष्ण का जो पवित्र नाम है वो कृष्ण से अभिन्न नहीं है, साक्षात कृष्ण है। इसलिए हम देखते हैं पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार नारद मुनि का काम ही है, ट्रैवलिंग प्रीचर है, वो भ्रमण करते ही रहते हैं और वो कहां भी जा सकते हैं। हम पूरे त्रिभुवन में है, वो किसी भी स्थान में भ्रमण कर सकते हैं। और नारद मुनि जब भगवान कृष्ण इस भूतल पर थे, वृंदावन के बाद मथुरा को छोड़कर भगवान द्वारका में निवास करते हैं, अपने 16,108 रानियों के संग में अलग अलग महलों में, तो नारद को सबसे अच्छा लगता था ट्रैवल करना। कहां जाते थे वो? हमेशा द्वारका जाते थे, कुछ ना कुछ सेवा का बहाना बनाते थे और द्वारका में चले जाते थे। तो ऐसे नारद जब एक बार द्वारका पहुंचे तो वो उससे पहले इंद्र को मिलकर आए थे और इंद्र को मिलकर आए थे तो भगवान को मिलने के लिए द्वारका गए तो भगवान रुक्मिणी के महल में बैठे थे और उसी समय नारद वहां पहुंचते हैं, कृष्ण उनका स्वागत करते हैं। नारद के पास कुछ भगवान को अर्पित करने के लिए था, क्या था उनके पास? एक पारिजात पुष्प था, जो पारिजात पुष्प उन्हें स्वर्ग में प्राप्त हुआ था इंद्र के द्वारा और उस पुष्प को वो भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहते हैं। और कैसे? उनके साथ रुक्मिणी बैठे थे, तो नारद का कार्य ही है, कृष्ण लीला और मधुर हो जाती है जब नारद क्या करते हैं उसमें कुछ फ्लेवर ऐड करते हैं। नारद जैसे आ जाते हैं तो कृष्ण को भी सोचना पड़ता है अभी नेक्स्ट क्या होगा। तो नारद जैसे ही आए, नारद ने कहा कि ये मैं आपको पुष्प अर्पित कर रहा हूं, आप जिनसे सर्वाधिक प्रेम रखते हैं, जिनसे सर्वाधिक प्रीति करते हैं उन्हें आप पुष्प दीजिए। उनके साथ कौन बैठे थे? रुक्मिणी। कृष्ण सोच भी नहीं सकते अपने दूसरी पत्नी के बारे में, सत्यभामा के बारे में या फिर कालिंदी के बारे में वगैरह। तो भगवान ने पुष्प लिया, साथ ही रुक्मिणी है तो सबसे प्रियतम, तो भगवान ने किसको पुष्प पकड़ाया? रुक्मिणी देवी को। तो नारद वहां प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। कहां जाते हैं? सत्यभामा के घर में, सत्यभामा के महल में। और सत्यभामा नारद से सारी शिक्षाएं कह सकते हैं, उनके शिक्षा गुरु थे। नारद से सारा गाइडेंस या शिक्षाएं वो उनसे लेते थे सत्यभामा। और जब सत्यभामा ने नारद के आगमन को देखा, उनका स्वागत किया, उनकी परिचर्या की और उनसे नारद ने कहा मैं तो अभी अभी आया हूँ कृष्ण से, अभी अभी द्वारा रुक्मिणी के महल में मिलकर आपके पास ही आया हूँ और वहां मैंने उनको एक पुष्प अर्पित किया था और कहा था हाँ कि क्या आप जिनसे सर्वाधिक प्रेम करते हो उनको ये पुष्प दीजिए। तो सत्यभामा को सोचा, सत्यभामा ने सोचा अरे पुष्प कृष्ण ने रुक्मिणी को दिया, तो सत्यभामा ने सोचा मुझे पुष्प नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पूरा ट्री चाहिए, पूरा वृक्ष ही चाहिए। तो कृष्ण को ये फंसा देते हैं एक प्रकार से, और वास्तव में कृष्ण को अपना बनाने के लिए पूर्ण रूप से कैसे मैं कृष्ण को अपने वश में रखूं, कृष्ण को कैसे कंट्रोल करो, कृष्ण तो कंट्रोल्ड होते कैसे, प्रेम रज्जु से, प्रेम रूपी रश्य से, भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग के द्वारा ही कृष्ण भक्त के वश में होते हैं। तो सत्यभामा उनको पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए जिसके द्वारा कृष्ण को मैं अपने वश में करूं। तो नारद उनको कुछ शिक्षाएं प्रदान करते हैं और भगवान सत्यभामा की ये जो इच्छा है उसकी पूर्ति करनी पड़ती है उनको, क्योंकि सत्यभामा ने डिमांड किया था मुझे पुष्प नहीं मुझे वृक्ष चाहिए। तो भगवान जब भौमासुर का वध करना था तो कृष्ण गरुड़ा के ऊपर जाते हैं तो सत्यभामा को भी अपने साथ ले जाते हैं। भौमासुर का वध करने के उपरांत भगवान भौमासुर ने जो उनकी मदर है अदिति इंद्र की उनके कुंडल चुराए हुए थे, उन कुंडलों को लेकर भगवान स्वर्ग में देने के लिए जाते हैं। जाकर इंद्र भी वहां होता है, इंद्र की मदर के वो कुंडल वापस करते भगवान और वापस निकलते यहाँ, तो जाते जाते उनको नंदन कानन जो उनका गार्डन है फेमस इंद्र का वो नजर आता है, तो उसमें क्या था, पारिजात वृक्ष थे। तो सत्यभामा कहते मुझे तो वृक्ष चाहिए, तो वो वहां से कृष्ण एक वृक्ष को लेकर आते हैं और सत्यभामा को देते हैं और उनके आंगन में लगाया जाता है। तो फिर एक दिन फिर से नारद वापस आते द्वारका और सत्यभामा बहुत खुश होती हैं। सत्यभामा कहते कि आपकी शिक्षाओं का पालन करके कृष्ण को मैंने क्या किया है, अपना बना लिया है, अभी कृष्ण पूर्ण रूपेण मेरे वश में है। तो नारद को वो कुछ दक्षिणा देना चाहती हैं, कुछ ना दक्षिणा या कुछ सर्व करना चाहती हैं। तो नारद कहते हैं मुझे आप कुछ देना ही चाहती हो तो मुझे एक चीज प्रदान करो। सत्यभामा कहते क्या चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा मुझे आप जिनसे सर्वाधिक प्रेम करती हो वो वस्तु मुझे चाहिए। सत्यभामा किनसे सर्वाधिक प्रेम रखते थे, कृष्ण से। तो एक प्रकार से सत्यभामा के प्राण को मांगा था नारद ने, क्या मांगा था, सत्यभामा के प्राण, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा, मेरे जो डिवोटीज के लक्षणों का वर्णन करते हुए कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरे भक्तों का चित्त सदैव मुझ में लगा रहता है और ऐसे लगा रहता है कि जैसे तैल धारवत, तैल धारवत मीन्स जैसे कि ऑयल को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो एक जैसे गिरता है ना, पानी को गिराओ तो इधर उधर उड़ेगा, उसकी लाइन खंडित हो सकती है उसकी धारा, लेकिन तेल को गिराओगे तो कैसे एक जैसे नीचे गिरता है, वैसे ही भगवान कहते मेरे भक्तों का चित्त मुझ में लगा रहता है, उनका चित्त मुझ में अलग करना असंभव है और ऐसे डिवोटीज मेरे लिए क्या करते हैं, मदगत प्राण, अपना प्राण भी मेरे सेवा में लगाते हैं या फिर मैं जिनका प्राण हूं। तो जैसे सत्यभामा को लगा कि नारद ने तो मेरे प्राण को मांग लिया है, तो सत्यभामा दिया हुआ वचन वो भी नारद जैसे उनके गुरु हैं उनको दिया, तो वो कृष्ण को पकड़ के लाती हैं, कृष्ण का हाथ पकड़ के क्या करती है लेके आती है और किसके हाथ में सौंपाती है, नारद के, और नारद तो खुश थे। नारद का कार्य है, नार का मतलब है नारायण और द का मतलब है देना, जिनका कोई बिजनेस ही नहीं है एक ही बिजनेस से जो भी मिले जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। वो केवल उपदेश ही नहीं देते तो कृष्ण भी दे देते हैं। नारद क्या करते हैं, उपदेश के साथ साथ कृष्ण भी उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं। तो ऐसे नारद ने जब कृष्ण के हाथ को पकड़ा, कृष्ण को लेकर निकल ही रहे थे, तो बाकी रानियों को पता चला। उन्होंने कहा रे ये तो उनके ले जा रहे हैं। तो फिर सारी रानियां कहने लगी कृष्ण आपके अकेले के नहीं है, कृष्णा हमारे भी हैं, कृष्ण यहां रुकने चाहिए। तो जब उनसे ये कहा तो नारद ने सोचा क्या उपाय किया जाए। हाँ तो फिर एक तराजू लेके आए, क्या कहते हैं उसको, तराजू जो भी नापने के लिए, वेट करने के लिए, हाँ जो स्केल है। तो जब तराजू लाया तो नारद ने कहा एक बार कृष्ण को मैं रखता हूं और दूसरी ओर हे सत्यभामा आप अपने सारे अलंकार आभूषण जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं वो आप एक पर रखो और उतना ही वेट होना चाहिए, बराबर वेट होना चाहिए, तो फिर कृष्ण आप ले लो और वो सारा गोल्ड मुझे दे दो। तो सत्य भामा ने सारा अपना सारे अलंकार आभूषण एकत्रित किए और उस तराजू के एक साइड में डाले। तो कृष्ण बहुत हेवी थे, अब कृष्ण ऊपर नहीं आ पा रहे थे एक प्रकार से, या वो लेवल सेम नहीं हो रहा था। तो सत्य भामा थक गए। और फाइनली उसी समय एक डिवोटी द्वारका में उन्होंने देखा कि रुक्मिणी देवी को बताना पड़ेगा। रुक्मिणी क्या है, सबसे प्रमुख रानी है और सबसे बुद्धिमान है। रुक्मिणी देवी उस समय, ये सुबह का समय था और रुक्मिणी देवी उस समय तुलसी की सेवा कर रही थी, तुलसी की प्रदक्षिणा कर रही थी, तुलसी को पूजन आदि कर रहे थे। तो उसी समय वो डिवोटी लेडी जाती है, उनको बताती है दौड़कर कि कृष्ण जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हो यहाँ। हाँ विसारी जो भी ये स्टोरी है उनको सुनाए किस प्रकार से कृष्ण को तराजू में रखा गया है। हाँ तो फिर रुक्मिणी तुलसी को प्रणाम करती है और एक तुलसी पत्र निकालती है। तुलसी पत्र लेकर उसके ऊपर क्या लिखती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो रुक्मिणी देवी उसके ऊपर कृष्ण नाम अंकित करती है और कृष्ण नाम अंकित करके जब वो वहां उस स्थान में पहुंचती है तो वहां देखती है कृष्ण एक और है और सारे गोल्ड ऑर्नामेंट एक और है। तो सारे उस आभूषणों को अपने हाथ से गिरा देती है, हटा देती है और उस स्थान में क्या रखती है, कृष्ण नाम जो तुलसी पर अंकित था वो रखती है। तो कृष्ण अचानक ऊपर हो जाते हैं और बल्कि एक जैसे हो जाते हैं, हेवी हो जाता है तुलसी पत्र के साथ कृष्ण नाम। तो फिर नारद दुखी होते हैं, नारद को क्या लेके जाना पड़ा अपने साथ, तुलसी पत्र जिसपे कृष्ण नाम अंकित था। और सत्य भामा को फिर से या रानियों को फिर से कृष्ण प्राप्त हुए। इस प्रकार से शास्त्र सदैव हमें प्रेरित करते हैं और इस चीज की शिक्षा देते हैं कि कृष्ण नाम का हम उच्चारण करते हैं तो हमें धीरे धीरे भक्तों के संग में ये अनुभूति को जागृत करना पड़ेगा, अभिन्नत्वात् नाम नामिना, कि भगवान कृष्ण का जो परम नाम है वो कृष्ण से अभिन्न है और कृष्ण नाम को ही एक साधक को अपना धन बनाना चाहिए। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद के जीवन से हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद में एक विशेषता थी। श्रील प्रभुपाद के जो गुरु महाराज एक गॉड ब्रदर थे कृष्णदास बाबा जी, उनको पूछा कि आप बताइए कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपने शिष्यों को पहले भी भेजा था लंदन आदि, वो असफल होकर वापस आए, लेकिन ऐसी भक्ति विदान स्वामी में क्या ऐसी विशेषता थी जो पहली बार अमेरिका गए और वहां से सफलता के साथ आए, सारे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार करके वो वापस आए। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज ने कहा कि क्योंकि प्रभुपाद के गुरु भाई थे, उन्होंने कहा श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्ति विदान स्वामी में ये दो गुण थे विशेष रूप से, और वो क्या दो गुण थे, एक तो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे पहला उनमें गुण था कि कृष्ण का जो पवित्र नाम है उसके प्रति उनके हृदय में प्रगाढ़ श्रद्धा थी। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे और वहां जब उन्होंने पोयम लिखी जिसमें उन्होंने कहा भक्ति नाही वेद नाही, वो कहते कि मुझमें ना भक्ति है ना ज्ञान है, भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करी, मेरा नाम तो भक्ति वेदांत रखा गया है लेकिन मुझमें भक्ति का लवलेश नहीं है और वेदांत मुझमें ज्ञान नहीं है, लेकिन हे कृष्णा मुझमें एक चीज है नामे खूब धरो, मतलब आपका ये जो पवित्र नाम है उसके प्रति में क्या हो बहुत अधिक फेथफुल हो, आपके पवित्र नाम को मैंने बहुत अधिक गंभीरता से पकड़ लिया है। इसी कारण से ये उनका पहला गुण था जिससे हम देखते हैं कि प्रभुपाद अपने साथ क्या ले जाते हैं भारत से, कृष्ण नाम को ले जाते हैं, श्रीमद् भागवतम को भी ले जाते हैं, जो भागवतम आदि मध्य और अंत में कृष्ण के नामों की महिमा का ही वर्णन करता है। शुरुआत में ही भागवतम के कहा गया है आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन, कि कोई व्यक्ति विवशतावश भी कृष्ण के नामों का उच्चारण करता है तो वो व्यक्ति इस भौतिक भव सागर का जो भय है उससे सरलता से मुक्त होता है। और भागवतम के मध्य में आजा मिलके उपाख्यान या आजा मिलके कथा का वर्णन करते हुए शुकदेव गोस्वामी नाम की जो महिमा है उसको स्थापित करते हैं और अंत में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कलेर दोषो निधि राजन अस्ति एक महत गुना कीर्तनादेव कृष्णशः मुक्त संग परम रजेत, कि कलयुग तो दोषों का सागर है लेकिन इस दोषमय सागर में एक एक चीज बहुत अमेजिंग है, यह एक चीज एक गुण इस कलयुग का है और वो गुण क्या है कीर्तनादेव कृष्णशः, कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन, कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण। इसलिए हम भक्त भगवान का जो पवित्र नाम है उसके प्रति सर्वाधिक आसक्त होता है, भगवान के नाम को ही अपना एकमात्र धन बना लेता है और यही श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों से अपेक्षा करते थे। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि दूसरा गुण उनमें यह था कि अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में वो पूर्ण रूपेण समर्पित थे। हाँ, तो भक्त अपने आध्यात्मिक जीवन में बलवान होता है, शक्ति संपन्न होता है या सामर्थ्यवान होता है जब वो अपने जीवन में इन दोनों चीजों की सेवा में लगता है, गुरु सेवा और दूसरा क्या है नाम सेवा। गंभीरता से जब एक साधक अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करने में समर्पित होता है और कृष्ण नाम की सेवा करता है, भगवान नाम को अपना धन बनाता है, तो वो व्यक्ति वास्तव में अत्यधिक बलशाली या संपन्न होता है। और यही चीज श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे। चैतन्य मंगल में एक लीला आती है जिसको मैं वर्णन करके समापन करता हूँ, जहाँ चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में निवास कर रहे थे तो उस समय चैतन्य महाप्रभु अपने अलग अलग भक्तों से मिला करते थे और उनके संग में कृष्ण नाम संकीर्तन किया करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित के रूप में वो जब थे शुरुआत के लीलाओं में, तो एक दिन वो एक स्थान में बैठकर गोपी 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 ऐसा उच्चारण करने लगे, तो किसी एक स्टूडेंट ने कहा अरे ये क्या है, कलयुग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, ये गोपी नाम संकीर्तन कहां से कर रहे हैं, गोपी गोपी कह रहे हैं। उन्होंने कहा गोपी गोपी निमाय क्यों कर रहे हो, कृष्ण कृष्ण कहो। हाँ, तो निमाय पंडित हमको गुस्सा आया, उन्होंने डंडा उठाया और उस स्टूडेंट के पीछे भागे। वो स्टूडेंट अपना जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते जो ग्रुप था स्टूडेंट्स का उसके बीच में जाकर पहुंचता है और वो आपस में चर्चा करने लगते सारे स्टूडेंट कि ये निमाय पंडित आपने आपको समझता क्या है, ब्राह्मण का पुत्र है, हम भी तो ब्राह्मण है तो हमें मारने के लिए तैयार हो रहा है। तो जब इस प्रकार से उन्होंने कहा तो निमाय पंडित जो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा मैं तो सारे जगत को कृष्ण भावना कृष्ण भक्ति देने के लिए आया हूँ, ये मेडिसिन एनएची औषधि माया नाशी बार लागे, यह ऐसी मेडिसिन है कृष्ण नाम जिसके द्वारा माया का विनाश हो जाता है। तो जब ऐसा महाप्रभु ने सोचा तो उन्होंने सोचा कि मुझे तो संन्यास ग्रहण करना चाहिए, मैं जब संन्यास ग्रहण करूंगा तो ये सारे जो मेरा अनादर कर रहे हैं, मेरा अनादर करके इनका हित होने वाला नहीं है, इनका अहित ही होगा, अमंगल ही होगा, ये इनका उद्धार इस भव सागर से होना असंभव है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि मुझे तो संन्यास ग्रहण करना चाहिए। तो संन्यास ग्रहण करने का चैतन्य महाप्रभु ने फिक्स किया और उन्होंने अपने 5 भक्तों को बताया कि मैं संन्यास ग्रहण करने वाला हूं। तो ये जो न्यूज है, महाप्रभु ने कहा कि मैं अपना जनेऊ सूत्र और शिखा का त्याग करूंगा, मतलब मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। तो ये न्यूज पूरे नवद्वीप में एक प्रकार से चर्चा हो रही थी। तो सची माता और उनकी जो पत्नी है विष्णुप्रिया, उनको भी ये पता चलता है। हाँ, विष्णुप्रिया चिंतित हो गई कि मेरे पति संन्यास ग्रहण करने वाले हैं। तो उस समय सची माता तो हमेशा एक स्टैचू की भांति अपने घर में बैठे रहते थे और उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती थी कि कैसे निमाई के वियोग में मैं रह सकती हूँ। तो जो आखिरी दिन था नवद्वीप में, जब चैतन्य महाप्रभु वहां निवास कर रहे थे, आखिरी दिन सुबह से उस दिन, जैसे दूसरे दिन महाप्रभु संन्यास लेने के लिए जाने वाले थे नवद्वीप को छोड़कर, तो उस दिन सारे नवद्वीप के भक्त, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कल चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित संन्यास ग्रहण करने वाले हैं। उस दिन सारे नवद्वीप के भक्त कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर चैतन्य महाप्रभु को मिलने आते थे और उनको माला लेकर आते थे, उनके लिए फ्रूट्स या जो भी ऑफरिंग्स लेके आते थे उनसे मिलते थे। ऐसा पूरे दिन चला और संध्या का लेट नाइट का समय हुआ तो एक आखिरी डिवोटी उनको मिलने के लिए आते हैं और वो कौन थे? खोला वेचा श्रीधर। खोला वेचा श्रीधर चैतन्य महाप्रभु को अत्यधिक प्रिय थे। भौतिक रूप से उनके पास कोई संपन्नता नहीं थी, लेकिन खोला वेचा श्रीधर का एक क्वालिफिकेशन क्या था? कृष्ण का जो पवित्र नाम है उसको उन्होंने बहुत गंभीरता से पकड़ा था। केले के छिलके या फिर दोना या फिर ये सब केले से संबंधित चीजों को सेल करके वो अपना उदर निर्वाह करते थे, उसमें से उनको जो भी आमदनी या कमाई होती थी उसका आधा प्रतिशत गंगा की सेवा में लगाते थे। तो ऐसे कोला वेचर श्रीधर भौतिक रूप से उनको कोई बाहरी रूप से देखे तो बहुत ही निर्धन थे। उनके पास एक ही धोती थी जिसमें 17 छेद थे, रहने के लिए नवद्वीप में एक कुटिया थी जिसमें पानी गिरता रहता था अंदर, और घर में कोई फर्नीचर या कोई और चीजें नहीं थी, एक छोटा सा पात्र था, लोहा लोहे का एक छोटा सा पात्र, वही उनका सब कुछ था। लेकिन ऐसे कोला वेचर श्रीधर निरंतर क्या करते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे कोला वेचर श्रीधर निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप मांगो कोला वेचर श्रीधर, तो वो कहते कि मुझे आपके सेवा या आपके नामों का उच्चारण करने के अलावा इस संसार में किसी और वस्तु या चीज की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कोला वेचर श्रीधर ने सोचा कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाता हूं, तो उन्होंने सोचा क्या लेके जाऊं। तो उन्होंने अपने घर के झोपड़ी के ऊपर देखा तो एक पंपकिन कद्दू उनके दिखाई दिया जिसकी वो पैदा हो गया था। तो उस पंपकिन को वो उठा लेते हैं और दौड़ते 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 चैतन्य महाप्रभु के घर में प्रवेश करते हैं और चैतन्य महाप्रभु को क्या भेंट देते हैं? एक कद्दू ला कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने नहीं कहा हे कहां से कद्दू उठा के लाया हो, आपको कोई लेके आए कोई डिवोटी मिलने और आपको कद्दू गिफ्ट दे आप खुश होंगे? मैंगोज हो तो ठीक है, एप्पल हो तो ठीक है, लेकिन कद्दू? तो चैतन्य महाप्रभु ने उस गिफ्ट को स्वीकार किया और स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु को फिर और एक डिवोटी मिलने आए जिन्होंने दूध उनको दिया और फिर उन्होंने जो भी प्रसाद बनाया सचिव विष्णुप्रिया ने, और जब चैतन्य महाप्रभु सो रहे थे तो विष्णुप्रिया उनके पास गई और विष्णुप्रिया ने कहा कि मैं सुन रहे हो कि आपने आप संन्यास ग्रहण करने वाले हैं, तो बहुत दुखी थी, रो रही थी। चैतन्य महाप्रभु के चरणों को अपने गोद में लिया और जिससे उनके आंसुओं की धारा जब गिरे तो महाप्रभु उठ जाते हैं और उनके हाथ को अपने सर में रखते हुए पूछते हैं, महाप्रभु के हाथ को विष्णुप्रिया अपने सर में रखती है और पूछती है कि मैंने सुना है कि आप संन्यास ग्रहण करने वाले हैं। कहते नहीं नहीं, कहां से सुना आपने, मैं संन्यास वगैरह ग्रहण नहीं करने वाला हूँ। फिर महाप्रभु सो जाते हैं, उनको नींद नहीं आती, फिर से मध्य रात्रि में महाप्रभु के हाथ को लेती है, अपने छाती में और मस्तक में रखती है और कहती है कि आप बताइए कि आप संन्यास ग्रहण करने वाले हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं क्या करने वाला हूँ, संन्यास ग्रहण करने वाला हूँ सारे जगत के हित के लिए, और तुम मेरी सहायता करने के लिए मेरे साथ प्रकट हो गई हो। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारी शिक्षाएं दी और फिर एक महत्वपूर्ण शिक्षा उन्होंने दी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है विष्णुप्रिया, इस संसार में दो ही चीजें शाश्वत हैं, उनकी शरण ग्रहण करो, बाकी सारी अशाश्वत है। ये क्या है, कृष्ण का जो पवित्र नाम है
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
और दूसरी चीज कृष्ण के जो डिवोटीज हैं, भक्तों का आश्रय ग्रहण करो, नाम का आश्रय और भगवान के भक्तों का आश्रय, हाँ इससे हमारा जीवन धन्य हो सकता है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि भगवान का पवित्र नाम को हमारा महत्वपूर्ण धन बनाना चाहिए, और तभी यह धन बन सकता है जब हम भक्तों का आश्रय लेंगे, उनके एसोसिएशन में आएंगे और श्रवण कीर्तन में भाग लेंगे। हरे कृष्णा। विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ शिवल्लभ प्रभु को जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कृष्ण का गुणगान करने की। हरे कृष्णा।